Bhagavad Gita Yatharup Anuvad or Tatparya Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Kidwara Chattva Adhyay Shlok Sankhya Chabis Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Shrotradinindriyanyanye Samyamagnishujuhvati Shabdadin Vishayananya Indriyagnishujuhvati Anuvad, in me say kuch vishuddha brahmachari shravanadi kriyaon tata indriyon ko man ki niyantran rupi agni me swaha kar dete hain to dusre log niyamit grihastha indriya vishayon ko indriyon ki agni me swaha kar dete hain Tatparya, manav jivan ke charong ashramong ke sadasya brahmachari grihastha vanaprastha tata sannyasi purna yogi banne ke nimitte manav jivan pashuong ki bhanti indriya tripti ke liye nahi bana hai atev Manav jivan ke chari ashram is prakar vyavastit hai ki manusha adhyatmik jivan me purnata prapt kar sake. Brahmachari ya shishyagan pramanik guru ki dekrek me indriya tripti se dur rakha man ko vash me karte hai. Ve krishna bhavanamrit se Sambandit shabdon ko hi sunte hai. Shravan gyan ka muladhar hai. Atha shabd brahmachari, shuddh brahmachari, sadaiv harer namanu kirtanam, arthat bhagavan ke yash ke kirtan tata shravan me hi laga rehte hai. Va Sangsarik shabd dhvaniyon se dur rehte hain aur uski shravanendriya hare krishna ki adhyatmik dhvani ko sunne mein hi lagi rehte hain isi prakar se grihastha bhi jinhe indriya tripti ki simit chhut hai बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं यौन जीवन मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म निवाह का प्रचलन है या संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपने इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है श्रोतादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयाण्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति यही श्लोक श्रीमद् भागवत गीता का छठवा अध्याय में आते हैं इस अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान और यही अध्याय में दिव्य ज्ञान की चर्चा होती है और इस अध्याय में भी यज्ञ भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ के बारे में चर्चा होती है। तो यज्ञ कर्मयोग का एक मुख्य अंग है, तो क्यों यज्ञ की चर्चा होती है दिव्य ज्ञान अध्याय में है, क्यों उसका कारण क्या है? सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यह अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब कर्म उसका फल होते कर्म करने से कि ज्ञान की उत्पत्ति होगी। कर्म का आप सब जानते हैं कर्म शब्द का अर्थ क्या है, परंतु भगवद गीता में और शास्त्र में ये कर्म शब्द तो उसका विशेष अर्थ है। तो मुंबई में सब कर्म करते हैं, नहीं अलग अलग कर्म होते, परंतु वैदिक कोश में ये कर्म शब्द का विशेष अर्थ है। तो वैदिक नियमों से निमित वो ही कर्म कर्म वो ही कर्म बोलते। कर्म से मतलब गाधा भी कर्म करते हैं, नहीं लेकिन गाधा तो कोई योगी नहीं है। तो कर्म भगवद गीता में वो कर्म शब्द का अर्थ है सब जाएगा मैं नहीं, यही अध्याय में इस प्रसंग में कर्म शब्द का अर्थ है वैदिक शास्त्रों से नियमित कार्यकलाप, वो ही कर्म बोलते। वो तो केवल हाथ से कुछ उठाना या खेती में काम करना, वो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, नहीं तो ब्राह्मण का कर्म है यजन दान प्रतिग्रह पठन पाठन, और क्षत्रिय का काम है प्रजाओं की रक्षा करना और यदि आवश्यकता हो युद्ध करना प्रजाओं और विशेषकर धर्म का रक्षण करने के लिए। वैश्यों का कर्म है कृषि गौरक्षा और वाणिज्य, कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, और शूद्रों के लिए दूसरे तीन उच्च वर्णों की सेवा करना परिचार्या करना। तो ये सब कर्म के अंतर्गत है और उसके अलावा सब कुछ जो वेद पंथी जन कहते वो सब कर्म के अंतर्गत है। जैसे वो सब कुछ जो कहते जैसे मथाएं पाकशाला में रंधन करते हैं वो उनका कर्म है। तो इसी प्रसंग में जो वैदिक वैदिक नियमों के अनुसार कर्म करते हैं तो उसी प्रसंग में कर्म और धर्म दोनों शब्द का प्राय एक ही अर्थ है। क्षत्रिय का धर्म है प्रजाओं की रक्षा करना, वो क्षत्रियों का कर्म भी होता। धर्म का मतलब उनके कर्तव्य और कर्म क्षत्रियों का कर्म वो ही करना, वो धर्म का व्यवहारिक व्यवहारिक रूप है, व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। धर्म का व्यवहारिक अभिव्यक्ति है कर्म, और वो सब वैदिक कर्म करने से ज्ञान परिसमाप्यते है, ज्ञान का उदय होते मन में, क्योंकि वो कर्म करने के साथ वैदिक ज्ञान सुनना चाहिए, साधु जन ब्राह्मण गण से सुनना चाहिए। तो वैदिक ज्ञान में पृथक पृथक स्तर है। सर्वोच्च स्तर है ब्रह्म विद्या, परंतु सब व्यक्ति की चेतना इतनी उचनी नहीं है ब्रह्म विद्या सुनने के लिए, सब योग्य नहीं है ब्रह्म विद्या के लिए। तो इसलिए पुराण शास्त्र भी है, महाभारत भी है, रामायण भी है, जो सब लोग तो बड़ा विद्वान बड़ा बुद्धिमान नहीं होते हुए भी तो रामायण की कथा पुराण शास्त्र की कथा सुनने से वैदिक ज्ञान रुचिकर रूप में मिलते। तो ऐसा नहीं है कि रामायण तो नीच लोग के लिए है, तो सब के लिए है। तो महान विद्वान ब्रह्म विद्या संपन्न ऋषियों के लिए भी रामायण पूज्य है, परंतु रामायण और पुराण शास्त्र की वो ही विशेषता है कि सबसे उच्च आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे उच्च व्यक्तियों के लिए भी है और नवीन के लिए भी है। तो यही श्लोक में कि यज्ञ करना है ब्रह्मचारियों के लिए श्रवण के द्वारा। जैसे आप सुनने हैं कि भगवद गीता है ज्ञान यज्ञ, सामान्यतः यज्ञ शब्द से वो शब्द से हम क्या समझते हैं कि अग्नि में आहुति करने हैं, तो वो एक प्रकार का यज्ञ है। और अपना जीवन आहुति करना वो भी यज्ञ है। और क्षत्रियों धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में सब एक महान यज्ञ में शामिल थे, जिसमें उनके जीवन उनके प्राण अर्पण वो ही आहुति थी। तो इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ है। यज्ञ में मुख्य भावना क्या है, इदम नारायणाय नमः। सब वस्तुओं जो मैं जो यजमान हूँ यज्ञ ब्राह्मण के द्वारा सब कुछ जो मैं अर्पण करता हूँ वो नारायण के लिए मेरे लिए नहीं है। और यही भावना सभी वैदिक ज्ञान का सारांश है। जैसे गीता का अंत में भगवान कृष्णा इनके चरम उपदेश में क्या कहते हैं, सर्वधमान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। तो इदं नारायणाय नमः, ये सब नारायण के लिए है, मेरे लिए नहीं है। वो निष्काम कर्मयोग की भावना है। और वो निष्काम कर्मयोग की पूर्णता होती है कैसे, सर्वधमान परित्यजा मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ जो हम करते हैं धर्म के नाम में वो सब कुछ परित्याग करके, अर्थात सब कुछ सभी प्रकार का धर्म जो हम पालन करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ स्वार्थ की कामना रहती है वो सब चरण है। और यही धर्म ग्रहण करना चाहिए, अपना प्राण सब कुछ भगवान कृष्ण के चरण पर अर्पण करना चाहिए। तो इसी प्रकार धीरे धीरे भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को सूचित करते हैं तो वास्तविक कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, योग क्या है और भक्ति क्या है, कौन है भगवान, वो स्पष्ट है भगवद गीता में। बड़ी विचित्र बात है कि बहुत सारे पंडित विद्वान योगी इत्यादि भगवद गीता का अध्ययन करते हैं और वचन जो puritara spashte Bhagavad Gita mein ki Krishna Bhagavan hai. To wo vachan jo Bhagavad Gita ka saransh hai, to nahi samajhte. Nahang prakasha saravasya yoga maya samavrita mudho yang nabijanate loko mama jamavyaya. Bari vichitra hi baat hai ki to vidwan log jo Sanskrit to sab shabd ka ardh samajhte aur sab samas sandhi vyakaran sab kuch jante hai, phir bhi wo baat jo mukhya hai to nahi samajhte. Bar bar Gita mein Shri Krishna sthapan karte hai ki ve hi Bhagavan hai. Matapurata ram nanyat kinchid asti dananjaya. Isse aur kaise spasht ho sakte, mere upar koi nahi hai. Aur kya kehte ki aham bija prada pita aham sarvasya prabhavo matha sarvam pravartate. To bhinna bhinna paripreksh Bhagavan Krishna sthapan karte ki vehi param hai, vehi Bhagavan hai. Or Arjun bhi srikar karte param brahma param dhama pavitram paramam bhavan purushang shashvatam devyam adi devamajam vibhu. Param brahma hai Krishna, param dham hai Krishna, param pavitra hai Krishna, shashvata divya purush hai Krishna, adi dev devon ke janma ke pahele Bhagavan Krishna upasthit hai. Sab aham adir hi devanam, sab devgan Krishna se aate. Aur Krishna aja hai, matlab Krishna ka koi sadharan janma nahi hai. Jaise hum janma lete hai to karma phal ke anusar kabhi kabhi manusha janma prapt hoti aur kabhi kabhi alag pakshi pe sap 84 lakh prakar ki jeev jati hai. Parantu Krishna Bhagavan apni ichcha se apni daya se hamare beech mein upasthit hote hai. Bhagavan Krishna ka janma mrityu nahi hota. So Bhagavan Krishna ajaho vibhu mahan Krishna mahato. Isi prakar Bhagavad Gita mein bar bar sthapit hota hai ki Krishna Bhagavan hi hai. Krishna sarvopari hai. Parantu aise bahut log hai jo Bhagavad Gita baba padhte phir bhi nahi samajhte. Ye baat is prakar hai ki Ramayan ke sat khand padhne ke paschat aise kehna ki wo sab kuch padh chuki hoon parantu mere man mein ek sandeha hai. Sita kiske swami hai? Sita kiske swami hai? To prashna to sambhav nahi. Sita to mahila hai, to kisi ke swami nahi hai. To puri Bhagavad Gita padhne ke paschat yadi hum nahi samajhte ki Krishna Bhagavan hai, to puri Ramayana ka padh karne ke paschat aise puchna Sita kiske swami hai? Wo puri Ramayan par chuki hoon lekin keval yehi shanka hai mere man mein, Sita kiske swami hai? Hare Krishna. To isliye actually Arjun to Bhagavan Krishna ke shuddh bhakt hai, aur isliye Bhagavan Krishna Arjun ko Bhagavad Gita ka gyan parivesan kiya. Bhakto se mai sakha chaiti rahasyam hi aitha dutaman. Ye uttam rahasya mein tum Arjun ko kehta hoon kyunki tum mere param bhakt ho. Isliye mad bhakta etad vigyaya. Anyatra Bhagavad Gita mein Shri Krishna kehta hai ki ye sab gyan jo Bhagavad Gita mein hai mere bhakjan samajh sakte, koi dusre nahi. तो सब लोग तो भक्त नहीं, एक्चुअली अर्जुन के लिए भगवद गीता कहने का जरूरत नहीं था। अर्जुन तो थोड़े समय में मोहित जैसे थे, अर्जुन तो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त है और कभी भी मोहित नहीं हो सकते, परंतु एक विशेष कारण से अर्जुन मोहित हो गया, जिससे भगवान कृष्ण अवसर मिले उनको भगवद गीता का ज्ञान परिवेशन करना। परंतु वास्तव में भगवद गीता तो अर्जुन के लिए नहीं है, वो हम सब के लिए है, हम जो माया कवलित जीव है। तो माया में कोई है जो कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, बहुत बहुत अलग अलग प्रकार के मत होते, अलग अलग प्रकार के मत होते, विशेषकर हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में आजकल मुख्य सूत्र है जोतो मत ततो पथ, जो भी आपके मत वो ही एक पथ है। परंतु गीता में श्री कृष्ण कहते हैं माम एकम शरणं व्रज, केवल मेरे चरण में शरणागत होना चाहिए, यही धर्म है। तो पूर्व काल में भी बहुत मुनि ऋषि योगी पंडित ऐसे थे, और महाभारत में कहा गया है यही भगवद गीता जो युद्ध भूमि में भगवद गीता अर्जुन को बताए, तो उसके पहले महाभारत में आता है यक्ष प्रश्न, जिसमें वो यक्ष रूपी यमराज अपना पुत्र युधिष्ठिर से बहुत विषय के बारे में पूछे। तो उसमें युधिष्ठिर महाराज का एक वचन है, ना सब ऋषि यज्ञ मथम न भिन्नम, तो ऋषि होने के लिए सब दूसरे ऋषि से नया भिन्न मत स्थापित करने चाहिए, किसी के शिष्य नहीं होना चाहिए, तो अपना मत प्रकट करो और ऐसे बड़े ऋषि बन जाओ। तो चूंकि मानव समाज में ऐसे बहुत बहुत मत है, इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता बताए और धीरे धीरे भगवद गीता का उपदेश के द्वारा भगवान कृष्ण स्थापित किए कि कर्म ज्ञान और योग के ऊपर भक्ति ही है, और हर एक जीव के लिए कृष्ण भक्ति करने चाहिए, क्योंकि ममाइवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हर एक जीव भगवान कृष्ण के अंश है। इसलिए हर एक बहुत असंख्य जीव है, परंतु सबका मूल धर्म एक ही है। वो मूल धर्म क्या है? कृष्ण भगवान है और सब जीव कृष्ण के अंश है, इसलिए सब जीव का धर्म है वो भगवान की सेवा करना। तो यही श्लोक में भगवान कृष्ण विशेषकर श्रवण के बारे में कहते हैं, ब्रह्मचारियों के लिए श्रवण करना की आवश्यकता है, वास्तव में तो सब के लिए उसकी आवश्यकता है, परंतु विशेषकर ब्रह्मचारी जीवन में शास्त्र ज्ञान अर्जन करना चाहिए। ब्रह्मचारी जीवन तो बाल्यकाल और युवकाल में होते, तो उस समय मन ताजा होते और वो ही वायस है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो ब्रह्मचारियों का मुख्य धर्म है श्रवण करना, वैदिक ज्ञान श्रवण करना और कंठस्थ करना, वो ब्रह्मचारियों के लिए है। और गृहस्थों के लिए भी उदाहरण है, ऐसा नहीं है कि वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मचर्य और सन्यासी त्यागी परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, गृहस्थों भी प्राप्त कर सकते हैं। यही तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये श्लोक का अर्थ बताते हैं कि गृहस्थ जीवन में कुछ इंद्रिय सुख करने का अवसर होते, ब्रह्मचारियों के लिए इंद्रिय तर्पण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ तथा सन्यासी सब विरक्त होने चाहिए, परंतु गृहस्थ जीवन में कुछ इंद्रिय सुख करने का अवसर होते, परंतु वो नियमित होने चाहिए। नियमित मतलब वैदिक नियम के अनुसार, और वो इंद्रिय सुख कृष्ण सेवा में भी नियुक्त करना चाहिए। जैसे गीता में दशम अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि धमा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ, कि यौन जीवन जो ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासी के लिए पूरा निषेध है, वो भी धार्मिक होते और कृष्ण उसमें उपस्थित होते यदि वो यौन जीवन तो वैदिक नियमों के अनुसार करना है। तो ऐसा नहीं है कि यौन जीवन तो पूरा वर्जित है वैदिक संस्कृति में। ऐसे बहुत बड़े बड़े सन्यासी थे भारत का इतिहास में, जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सबके माता पिता थे। तो यदि सब लोग विरक्त होते, यदि कोई धार्मिक कम से कम धार्मिक यौन जीवन पालन नहीं करते, तो कैसे समाज चलेगा? तो उसका एक धर्म है, गृहस्थों के लिए वो ही धर्म है संतानों को उत्पत्ति देना, परंतु वो यौन जीवन तो वैदिक नियमों के अनुसार होना चाहिए। तो केवल काम से नहीं होना चाहिए, काम तो होते हैं, वो तो काम बोलते हैं, लेकिन धर्म साथ साथ होने चाहिए, अर्थात वो काम का उद्देश्य होने चाहिए आदर्श संतानों को फायदा देना, वो एक कर्तव्य है गृहस्थों। तो इसी प्रकार ब्रह्मचारी गृहस्थ सब भिन्न भिन्न रूप से धर्म पालन कर सकते हैं, और ये सब धर्म पालन का चरम लक्ष्य श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। तो धीरे धीरे भगवान कृष्ण सब कुछ बताता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मचर्य के लिए श्रवण करना है, विशेषकर ब्रह्मचर्यों के लिए, लेकिन सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि और सब जीव का मूल धर्म है कृष्ण भक्ति करना, और कृष्ण भक्ति में प्रथम है श्रवण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नवविध भक्ति में प्रथम है श्रवण। वो कृष्ण भक्ति सबके हृदय में है सुप्त रूप में, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम श्राद्ध कबुनय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे हृदय। वो कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम जो सबके हृदय में है सुप्त रूप में, वो पुनर्जागृत होते कृष्ण भक्ति साधन से, जिसमें प्रथम है श्रवण करना। कीर्तन के पहले श्रवण होते, कीर्तन करना बहुत सरल है, हरे कृष्णा वही कीर्तन है, परंतु हम कैसे मालूम सकते हैं कीर्तन करना यदि हम पहले श्रवण नहीं करते। यदि मैं किसी व्यक्ति को बोलता हूँ तुम महामंत्र कीर्तन करो, वो यदि वो नहीं जानते महामंत्र क्या है तो कैसे महामंत्र कीर्तन करें, और यदि हम नहीं कहेंगे तो कैसे प्रेरित होंगे कीर्तन करना, तो पहले श्रवण होते हैं। और कीर्तन हरिनाम कीर्तन मुख्य है, विशेषकर कलि युग में हर नाम एव केवलम, कलौ नास्चैव गतिरन्यथा। परंतु वो कीर्तन करने के साथ श्रवण करना अनिवार्य है, क्योंकि यदि हम कीर्तन करते हैं परंतु मन में भूल धारणा रहते हैं, वो कीर्तन तो पूरा शुद्ध कीर्तन नहीं होगा। जैसे लोग हरे कृष्ण कह सकते हैं लेकिन मन में सोचते हैं मैं ही कृष्ण हूँ, ऐसे हैं कुछ लोग जो सोचते हैं कि हाँ मैं भगवान। बहुत हिंदू धर्म में वो भूल धारणा बहुत प्रचलित है नहीं कि सब भगवान है, कुछ लोग बहुत भूल धारणा है, तो इसलिए श्रवण करना चाहिए जिससे हम स्पष्ट सच धारणा मिलेंगे, भगवान कौन है, हम कौन है, हम भगवान के दास, हम भगवान के समान नहीं है, और कभी भी हम समान नहीं होंगे, हम भगवान के नित्य सनातन सेवक है, तो यही समझना चाहिए। और ये सेवियर सेवक भाव से यदि हम कीर्तन करेंगे तो बहुत शीघ्र ही हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति कृष्ण प्रेम का उदय होगा, और यदि हम भूल धारणा से कीर्तन करते हैं तो वो कीर्तन तो पूरा शुद्ध कीर्तन नहीं होगा। इसलिए श्रवण और कीर्तन दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण ही है। हरे कृष्ण, यदि किसी के प्रश्न है यही विषय के बारे में कृपा करके पूछिए अभी, या यदि कुछ मंतव्य हो ये विषय के बारे में बोलिए। किसी का ये मतलब ब्रह्मचारी तो पूरे दिन श्रवण कर सकते, गृहस्थों के अलग अलग कार्य है, इसलिए श्रवण विशेष कर ब्रह्मचारियों के लिए। ब्रह्मचारी जीवन तो विद्यार्थी का जीवन है, इसलिए दिन भर सुनते रहते, और गृहस्थों के लिए सुबह शाम को सुन सकते, इन सब के लिए श्रवण करना चाहिए। और जो सुनेंगे तो एक ही है, मतलब जो ब्रह्मचारी सुनते और गृहस्थ सुनते तो एक ही है, मतलब कि हम कृष्ण के चरण में शरणागत होने चाहिए, वो ही है। नहीं, सब लोग तो वैसे स्पष्ट नहीं कहते, लेकिन सब जीव जो भौतिक जगत में है क्यों यहाँ, Ishvara ham aham bhogi, I say sochna. Ki yo jagat mein sab kuch jo hai mere bhogne ke liye hai. O mayavadi, mayavadi prachar se kuch log to spasht, I say sochte, ki mein bhagwan hu. O dusre to paroksh bhav se sochte, ki हाँ और सब कुछ जो जगह में है मेरे भोगने के लिए है. तो बार बार सुनना चाहिए कि भगवान कृष्णा उपभोगी है और हमारा धर्म है सब कुछ करने जिससे वे प्रसन्न होंगे और इसी प्रकार हम प्रसन्न होंगे. यदि हम सीधे प्रयास करते हैं जिससे हम सुखी होंगे तो हम सुखी नहीं होंगे. यदि हम प्रयास करते हैं कि मेरे काम से कृष्ण भगवान संतुष्ट होंगे फिर हम संतुष्ट होंगे. सवाई पुंसंग परो धर्मो यथो भक्तिरधोक्षजय अहैतुक्य प्रतिहता यम सुप्रसिद्धि. यही श्लोक सब भक्तियों का सब सिद्धांत का मूल आधार यही है कि सब जीव के लिए परम धर्म यही है भक्ति अधोक्षज. अधोक्षज की भक्ति, अधोक्षज का मतलब कृष्ण जो साधारण जड़ इंद्रियों से अतीत है. और वो भक्ति किस प्रकार होने चाहिए? अहैतु की, अर्थात उसमें कुछ स्वार्थ नहीं होना चाहिए. वो भावना वैसे होने चाहिए इनम नारायणाय नमः. और अप्रतिहता उसका मतलब जो कभी कभी भक्ति करना कभी कभी नहीं करना वैसे नहीं है सदैव. और या उसी प्रकार भक्ति करने से यह आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा सुख होते हैं उससे. और जितने भी हम प्रयास करते हैं अपने भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करना हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, विपरीत होगा. यही संस्पर्श जाप होगा दुख योनि एव ते आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुद्ध. इंद्रिय सुख का प्रयास से क्या होते? दुख. सुख नहीं होते, दुख. इसलिए बुद्धिमान लोग तो वो प्रयास नहीं करते. यमराज और धामराज, कोई कोई कहते कि यमराज और धामराज अलग है. सामान्यतः यमराज और धामराज एक ही व्यक्ति है, सामान्यतः वो पता चलता है. और प्रभुपाद भी वैसे स्वीकार किए. शायद यदि कुछ ही पंडित जो शास्त्र विश्लेषण करके सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं कि धामराज पृथक है, वो आपका प्रश्न है क्या? वो है. मुझे मालूम है कि यही चर्चा चलती है लेकिन उसमें मैं गहरा प्रवेश नहीं किया था. वो ही है.